नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। देश में सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार के तहत जीएसटी को लागू हुए 6 साल पूरे हो चुके हैं और अब 1.5 लाख करोड़ रुपए का मासिक राजस्व एक तरह से सामान्य हो चुका है। हालांकि कर प्रणाली में धोखाधड़ी के नए तरीके भी आजमाए जा रहे हैं, लेकिन कर अधिकारी उसे निपटने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए जाली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी कंपनियां बनाने वालों की धरपकड़ के लिए जीएसटी अधिकारियों ने डेटा एनालिटिक्स, एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संचालन करने वाली कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन का बाजार पूंजीकरण बुधवार को 1 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली एयरलाइन है। बीएसई पर इंटर ग्लोब एविएशन का शेयर बुधवार को 3.55% बढ़कर 2,619.85 रुपए पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 4.12% बढ़कर 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर 2,634.25 रुपए पर भी पहुंच गया था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर 3.61% चढ़कर 2,621.10 रुपए के भाव पर बंद हुए। शेयर मूल्य में बढ़ोतरी होने से बीएसई पर कंपनी का बाजार मूल्यांकन बढ़कर 1,01,007.56 करोड़ रुपए हो गया। इस साल अब तक बीएसई पर शेयर में 30.53% का उछाल आ चुका है, जबकि इस अवधि में सेंसेक्स 5% ही बढ़ा है। इंडिगो ने अपनी विस्तार योजनाओं को ध्यान में रखते हुए पिछले हफ्ते एयरबस को 500 विमानों का पक्का ऑर्डर देने की घोषणा की थी। हैदराबाद की इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचा कंपनी आरएसी एनर्जी ने यहां नई बैटरी उत्पादन इकाई शुरू की है। ये इकाई 10,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में फैली है। कंपनी ने बयान में कहा कि इस इकाई का उद्घाटन बुधवार को हुआ। इस संयंत्र की क्षमता प्रतिवर्ष 30,000 बैटरी विनिर्माण की है। बयान के अनुसार ये इकाई कंपनी के 2025 तक 80,000 दोपहिया और तिपहिया वाहनों तक अपनी पहुँच बनाने के लक्ष्य का हिस्सा है। कंपनी का इसी समय सीमा तक 2,50,000 बदलने योग्य बैटरी परिचालन में लाने का लक्ष्य है। विमानन क्षेत्र का नियामक डीजीसीए दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही एयरलाइन गोफर्स्ट में नई जान डालने के लिए पेश योजना से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण करने के साथ उड़ानों का संचालन दोबारा करने की उसकी तैयारियों को भी परखेगा। सूत्रों ने ये जानकारी दी। गोफर्स्ट की उड़ानों का परिचालन वित्तीय समस्याएं गहराने के बाद 3 मई से ही बंद चल रहा है। इस दौरान एयरलाइन ने स्वैच्छिक रूप से दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी लगाई थी, जिस पर उसे एनसीएलटी से मंजूरी भी मिल चुकी है। सूत्रों ने बताया कि गोफर्स्ट के मौजूदा प्रबंधन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने एयरलाइन की पुनरुद्धार योजना के विभिन्न पहलुओं पर बुधवार को डीजीसीए के अधिकारियों के साथ चर्चा की। घटनाक्रम से परिचित सूत्रों ने कहा कि दिवाला प्रक्रिया के समाधान पेशेवर के तौर पर नियुक्त शैलेंद्र अजमेरा और अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौशिक खोना ने पुनरुद्धार योजना के बारे में डीजीसीए अधिकारियों के समक्ष विस्तृत प्रस्तुति दी। इस दौरान पेश किए गए दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद डीजीसीए दोबारा उड़ानों के संचालन की उसकी तैयारियों का भी आकलन करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत के साथ एक महत्वाकांक्षी एफटीए करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सितंबर में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत जाने की संभावना भी जताई। सुनक ने बुधवार को अपने सरकारी निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आयोजित ब्रिटेन भारत सप्ताह 2023 समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों के कारोबारी रिश्ते बढ़ाने की व्यापक संभावना को लेकर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरी तरह सहमत हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और मैं इस बात पर सहमत हैं कि द्विपक्षीय कारोबार के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं। हम 2030 के रोडमैप पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सही मायने में एक ऐसा महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता चाहते हैं जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर पिछले साल जनवरी से ही बातचीत चल रही है। अडानी समूह और फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जीज की संयुक्त उद्यम अडानी टोटल गैस लिमिटेड अगले 8-10 वर्षों में गैस वितरण के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा करने पर 20,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी। अडानी टोटल गैस लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि वाहनों के लिए सीएनजी की खुदरा बिक्री और घरों एवं उद्योगों को पाइप से गैस पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचे के विस्तार पर अगले 8 से 10 वर्षों में 18,000 करोड़ रुपए से लेकर 20,000 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाएगा। कंपनी देश के 124 जिलों में वाहनों के लिए सीएनजी की खुदरा बिक्री करने के अलावा पाइप से घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति भी करती है। देश में इसके 460 सीएनजी स्टेशन हैं और पाइप से रसोई गैस के करीब 7 लाख उपभोक्ता हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे संबंधित विभागों को योजनाओं से लाभान्वित होने वाली कंपनियों के साथ चर्चा कर उनकी समस्याओं से अवगत होने को कहा है। अधिकारियों ने कहा कि मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को PLI योजना पर आयोजित एक कार्यशाला के दौरान ये सुझाव दिया गया। इस दौरान अपने क्षेत्र में PLI योजना चलाने वाले विभाग को ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि लाभार्थी कंपनियां अपना निवेश पूरा करने के साथ उत्पादन लक्ष्य भी हासिल करें। ये बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि सरकार ने PLI योजना के तहत मार्च 2023 तक मिले 3,400 करोड़ रुपए के दावों में से केवल 2,900 करोड़ रुपए का ही वितरण किया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।